ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಃ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಂ ಸಹಗಣರತ್ನಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ದಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಸಾದಿ ಗೌರವಾಗ್ನವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಣೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆಪ್ ಸಭಿ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೀನ ಕಕ್ಷಾ ಕೇ ಅಂದರ್. ತೋ ಜೋ ರಸಿಕಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇನ್ಕಾ ತಿರುವ ತಿಥಿ ಹೈ, ಯೇ ಶಿಲ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಥೇ ಔರ್ ಪ್ರೇಮ ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಥೇ, ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಸ್ವರೂಪ ಥೇ ರಸಿಕಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಔರ್ ಐಸೇ ಇನ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ತೋ ಪೂರಾ ಏಕ್ ಗ್ರಂಥ ಹೈ ಶ್ರೀ ರಸಿಕ ಮಂಗಲ್. ತೋ ಜೋ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ರಸಿಕಮಯ ರಸಮಯ ಕೆ ಪುತ್ರ ಗೋಪಿಜನ ವಲ್ಲಭನೆ ಜೋ ರಸಿಕಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಹೈ, ಉನ್ನೆ ಪೂರಾ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಗ್ರಂಥ ಲಿಖಾ ಹೈ ಪೂರಾ ರಸಿಕ ಮಂಗಲ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗಲ್ ಹೈ ಐಸೇ ಭಿ. ತೋ ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಉಸ್ಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನೀ ಥಾ, ಇಸ್ ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಯಾಸ ಕಿಯಾ ಹೈ ಏಕ್ ಬುಕ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಲೇಕಿನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ರಸಿಕಾನಂದ. ಯದಿ ಆಪ್ ಮೇ ಸೇ ಕಿಸೀ ಕೆ ಪಾಸ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಔರ್ ಜಿನ್ ಮೇ ಸಮಯ ಹೋ ತೋ ಆಪ್ ಪಢ್ ಸಕತೇ ಹೈ, ಔರ್ ಇತನೆ ಬಡೆ ಗ್ರಂಥ ಕೋ ತೋ ಪೂರೆ ಏಕ್ ಘಂಟೆ ಮೇ ಬೋಲ್ನಾ ಸಂಭವ ನಹೀ ಹೈ. ತೋ ಮೇನೆ ಜಿತ್ನಾ ಸಾರಾಂಶ ಕೆ ನಜರ್ ಕಿ ಮುಖ್ಯ ಲೀಲಾ ಹೈ ವೋ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾ ದೂಂಗಾ ಥೋಡಾ. ತೋ ಮುಖ್ಯತಃ ಒಡಿಶಾ ಜೊ ದೇಶ ಹೈ, ಉತ್ಕಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಜಿಸೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ, ಯೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೂಪ ಸೇ ಬಹುತ್ ಹೀ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ರಹಾ ಹೈ, ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಬಹುತ್ ಪ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಹಾ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಪೇ ಶಂಖ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗದಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪದ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಔರ್ ಚಕ್ರ ಚಕ್ರ, ಯೇ ಚಾರ್ ಜೋ ಹೈ ವಹಾಂ ಪೇ ಐಸಾ ಉಡಿಶಾ ಕೆ ಅಂದರ್ ಬತಾಯ ಜಾತಾ. ಜೈಸೆ ಜೋ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಹೈ ವೋ ಹೈ ಶಂಖ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಔರ್ ಐಸೆ ಹೀ ಜೋ ಪೂರಾ ಬಾಲಾಸೋರ್ ತಕ್ ಐಸಾ ಉಡಿಶಾ ಕೆ ಅಂದರ್ ಲೇಕಿನ್. ಔರ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೇ ಭಿ ದೇಖಾ ಜಾಯ್ ತೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೂಪ್ ಸೇ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ತೋ ವೈಸೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ, ಲೇಕಿನ್ ಉಡಿಶಾ ಪ್ರದೇಶ ಕೆ ಅಂದರ್ ಆತಾ ಹೈ. ತೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಿ ಆಖರಿ 18 ಸಾಲ ಉಡಿಶಾ ಕೆ ಅಂದರ್ ರಹೆ. ಅಭಿ ಭಿ ಉಡಿಶಾ ಕೆ ಅಂದರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಪ್ರಾಂತ ಕೆ ಅಂದರ್ ಜೊ ಹೈ ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ ಪ್ರೆವಲೆಂಟ್ ಹೈ. ಹಮಾರೇ ಕೈ ಭಕ್ತ ಉಡಿಶಾ ಸೇ ಬತಾತೇ ಕಿ ವಹಾಂ ಪೆ ತೋ ಘರ್ ಘರ್ ಮೇ ಬಚಪನ್ ಸೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ್ ಸುನಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ತಿಲಕ್ ದೇಖಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಘರ್ ಘರ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಪೂಜಾ ಹೋತಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಕಿ ಪೂಜಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಇತ್ಯಾದಿ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ಸಮಯ ಥಾ ಐಸಾ ನಹೀ ಹೋತಾ ಥಾ. ಔರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಅಪ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಿ ಆ ಗಯೇ ಥೇ, ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಭಿ ಸಮ್ ಔರ್ ದ ಅದರ್ ಇಸ್ ಬುಕ್ ಕೆ ವರ್ಣನ್ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಉಸ್ ಸಮಯ ವಹಾಂ ಪೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ ವರ್ಷಿಪರ್ ಔರ್ ದೇವತಾಂ ಕೆ ಉಪಾಸಕ್ ಔರ್ ವೈಷ್ಣವೋ ಕಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಲೋಕ ಐಸೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಲೋಕ ವಹಾಂ ಪೆ ಆ ಗಯೇ ಥೇ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಕವರ್ಡ್ ಹೋ ಚುಕಿ ಥಿ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಜೋ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ಜೋ ಕಿ ಹೃದಯ ಚೈತನ್ಯ ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಥೇ, ಉನ್ಕೋ ಆದೇಶ ದಿಯಾ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಕಿ ಆಪ್ ಉಡಿಶಾ ಪ್ರದೇಶ ಮೇ ಆಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕರೋ, ಔರ್ ಶೀಘ್ರ ಹೀ ಏಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಕೋ ಆನೆ ವಾಲಾ, ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ಆಪ್ ಸೇ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇಗಾ, ಆಪ್ಕಾ ಶಿಷ್ಯ ಬನೇಗಾ, ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಪ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಉತ್ಕಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಮೇ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರೋ. ತೋ ಐಸೆ तो फिर ये जो रसिकानंद प्रभु के बारे में उन्होंने पहले ही वर्णन कर दिया था कि ऐसे ही व्यक्ति आएंगे। जितना हमने पढ़ा अभी तक उसमें ऐसा वर्णन तो नहीं आया, लेकिन जो श्यामानंदी वैष्णव है वो इन्हें अनिरुद्ध का अवतार बताते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक प्रामाणिक जितना ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन इनका जितना पढ़ा है तो उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन तो कहीं नहीं मिला कि अनिरुद्ध का अवतार है। लेकिन जो श्यामानंदी वैष्णव है, खासकर राधा श्याम सुंदर मंदिर है वृंदावन में, तो वो इनकी परंपरा के अंदर आते हैं। और ये पूरे गौड़ीय वैष्णविज्म के अंदर ही है, लेकिन उनका तिलक अलग रहता है। तो हम जानते हैं श्यामानंद प्रभु की स्टोरी से, राधा रानी ने स्वयं उनका तिलक लगाया था। और तो ऐसा बताते हैं कि दो व्यक्ति हुए हैं, जैसे एक तो कवि हुए हैं जिनकी पोएम्स के अंदर या बुक के अंदर भगवान ने स्वयं हैंडराइटिंग लिखा था, तो वो कौन थे? जयदेव गोस्वामी। और एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको राधा रानी ने स्वयं तिलक लगाया था, वो थे श्यामानंद प्रभु। तो उनके शिष्य थे रसिकानंद प्रभु। और रसिकानंद प्रभु वैसे तो एक राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए उड़ीसा के अंदर, और वो बहुत ही परम साधु थे और गौड़ीय वैष्णव के एक सिद्धांत पे स्कॉलर थे, विद्वान थे, एक बहुत ही रसिक भक्त थे, और श्यामानंद प्रभु के एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे। और श्यामानंद प्रभु के आदेश पर रसिकानंद प्रभु जो है अपने गुरु के विग्रह थे, गोविंद जी की पूजा करते थे, तो उनके हेड पुजारी बने और बहुत ही समर्पण के साथ उनकी सेवा किया। और जो है इस प्रकार से गोविंद जी की उस सेवा पूजा को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करने के बाद जो है रसिकानंद प्रभु ने को आदेश मिला था कि आप प्रचार कीजिए। तो श्यामानंद प्रभु के आदेश का उन्होंने पालन किया और लगभग 40 साल तक उन्होंने भ्रमण किया और बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया जो है चैतन्य महाप्रभु के संदेश से। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ उन्होंने डील किया, मुस्लिम्स, नास्तिक, चांडाल, और जो उतने लोग, और उसके अलावा ये तो ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे जानवरों को उन्होंने जो है भक्त बनाया। तो ये रसिकानंद प्रभु के एक चमत्कारिक जो है दिव्य शक्ति का प्रभाव है। तो क्योंकि गजेंद्र मोक्ष भी चल रहा है, तो मैंने सोचा ऐसे एक हाथी का उन्होंने उद्धार किया था, तो मैं वही स्टोरी आपको बताता हूँ। वो फेमस स्टोरी है, वैसे तो बहुत सारे स्टोरीज हैं इस बुक के अंदर, बट जो मोस्ट फेमस तो उनके बारे में आता है कि एक मुस्लिम यवन राजा था वहाँ पे, तो उसने जो है बोला कि एक पागल हाथी, जैसे कृष्ण की लीला में एक हाथी कंस ने भेजा था, उसका नाम था कुबलया पेड़, तो ऐसे यवन राजा ने एक जो है बड़े खूंखार हाथी को बोला कि आज जब रसिकानंद यहाँ से आएगा, क्योंकि एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर, रसिकानंद प्रभु, ये सब ने बहुत सारे निम्न जाति के लोगों को दीक्षा देके और मुस्लिमों को भी भक्त बना दिया, तो उनकी प्रतिष्ठा बहुत हो रही थी। और तो इससे जो हिंदू ब्राह्मण थे उनको भी ईर्ष्या होती थी कि भाई ये तो कल तो शूद्र थे और मुस्लिम थे, यवन थे, आज दीक्षा दे के संकीर्तन कर रहे हैं, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। तो इससे राजा को भी खतरा होता था और हिंदू ब्राह्मणों को भी खतरा होता था उनके जो पोजीशन को, तो सब एनवियस होते थे। तो उस यवन राजा ने बोला ये राजा जब रसिकानंद यहाँ आएगा ये पागल हाथी में छोड़ दूंगा, और अगर उसने इसको भक्त बना दिया तो मान जाएंगे कि ये इनके अंदर नारायण की शक्ति है। तो सबको मालूम था कि ऐसा जो है पागल हाथी हमें कुचल देगा, सबका डर तो लगा ही सबको, और मुसलमानों को लग रहा था, यवनों को लग रहा था कि नहीं, वो तो रसिकानंद का सारा भांडा फोड़ देंगे और ऐसा कुछ नहीं है, कोई महान व्यक्ति नहीं है, थोड़ा बहुत जादूगर शक्ति है उसके अंदर कुछ ऐसे। तो जो है लेकिन जो भक्त थे, जो साधु जन थे, भद्र पुरुष थे, उन सबको बड़ा वो लग रहा था कि अरे ये रसिकानंद प्रभु कुछ होना जाए। लेकिन जब रसिकानंद प्रभु अपने संगियों के साथ में आ रहे थे तो यवन राजा ने देखा, और उस समय जो है हाथी को उन्होंने भेज दिया, तो सभी शिष्य जो संगी थे वो तो भाग गए। और रसिकानंद प्रभु बोलते आप चलिए चलिए, ये हाथी आपको मार देगा, आप भाग जाइए यहाँ से। लेकिन रसिकानंद प्रभु ने जो है वो डरे नहीं बिल्कुल भी, और केवल कृष्ण भगवान का नाम जप करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अकेले ही रह गए। अभी जब ऐसा हाथी उनकी तरफ आ रहा था तो इवन यमन राजा देख रहा था दूर से, वो भी प्रार्थना कर रहा था भगवान इसकी रक्षा करो जो है लाइक दैट, क्योंकि अगर ये मारा गया तो मेरे को एक साधु हत्या का पाप लगेगा। उसके हृदय में भी एक्चुअली अच्छी भावना तो थी, लेकिन जब वो पागल हाथी रसिकान प्रभु के सामने आया तो उनके सुंदर रूप को देख करके वो भी रुक गया बिल्कुल वहां पे। और फिर रसिकान उसकी आंखों में देखा और ये बोला, तो मैं आपका जल्दी पढ़ के बता रहा हूँ, ओ मैड एलिफेंट लिसन टू मी, हे पागल हाथी मुझे सुनो, कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करो, क्यों तुम गलत कार्य निर्दयी कार्यों में लगे हुए हो, कृष्ण के ज्ञान के बिना सभी प्रयास जो है विफल हैं, कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण के चरण कमल पर समर्पण करो, सभी शास्त्रों का आदेश है कि कृष्ण की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ छोड़ दो, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करो, भगवान कृष्ण के अलावा तुम्हारा कोई और बंधु नहीं है, वही सभी जीवात्माओं के माता पिता और प्राण धन है, तुम क्यों मृत्यु की ओर जा रहे हो, बी केयरफुल नॉट टू बिकम प्राउड इन द वर्शिप ऑफ कृष्ण, कृष्ण की पूजा में आप सावधान रहिए ताकि आपको गर्व ना हो, कृष्ण ने ऐरावत जो इंद्र का हाथी है उसका गर्व नष्ट किया था और उन्होंने जो है एक ग्रह से भी एक हाथी की रक्षा की थी गजेंद्र की, तो ऐसे दोनों का लीला बताई उन्होंने, और नारायण जो भगवान नारायण है वो कृपा के सिंधु हैं, कृपा करके अपनी दुष्टता को छोड़ के उनकी पूजा करो और यदि तुम इस आदेश का पालन करोगे तो नंद महाराज के पुत्र कृष्ण आप पे कृपा करेंगे। तो जो है फिर ऐसे बता दें, एलिफेंट वॉज एबल टू बी रसिका ड्यू टू प्रीवियस ऑस्टेरिटीज, कि पूर्व जन्म में उसने वो तपस्या की होगी इसीलिए उसे रसिकांतों का संग प्राप्त हुआ और तुरंत उसने जिसको लगा कि भगवान नारायण है इन रसिकांत प्रभु के अंदर और वो बिल्कुल आंख में अश्रु भरते हुए बोला कि ये निश्चित रूप से साधारण व्यक्ति नहीं है, जो कुछ इन्होंने बोला है वो शास्त्र आदेश शास्त्र अनुगत है और ये निश्चित नारायण के एक्सपेंशन होंगे विस्तार होंगे। तो जो है तुरंत वो उनके चरण कमल में गिर पड़ा वो हाथी, रसिकांत प्रभु गए उसके कान में जाके क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस बात रसिकांत प्रभु ने हाथी को दीक्षा दी और फिर हाथी खड़ा हुआ और रसिकांत की परिक्रमा की और फिर आंख से अश्रु बहा करते वो जंगल की ओर चला गया और उनका नाम जो दिया उन्होंने क्या दिया, श्री गोपाल दास। और जो है उसने 100 बार प्रणाम किया फिर और फिर थोड़े टाइम धीरे धीरे करके वो जंगल की ओर चला गया। ऐसा इस बुक में वर्णन नहीं है लेकिन हमने सुना है भक्तों से कि वो हाथी फिर रोज आता था जो है और गांव में जाके रसिकांत प्रभु के लिए भिक्षा ग्रहण करता था और फिर वो भिक्षा अपने गुरु को ला के देता था, ऐसा पुस्तक में नहीं है लेकिन हमने सुना था भक्तों से इस प्रकार से भी। तो और जब ये देखा तो हिंदू जो ब्राह्मण थे और अन्य हिंदू जो ईर्ष्यालु थे और जो यवन जो थे वो सब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और सबके सब रसिकांत प्रभु के चरण कमल पर गिरे और उनके महानता को स्वीकार किया और सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। तो आज हम भी प्रार्थना कर सकते हैं रसिकांत प्रभु से कि कुछ कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में भी जागृत हो और वैष्णव की सेवा रहना कर रुचि जागृत हो। श्री रसिकानंद प्रभु की जय। श्री रसिकांत प्रभुति महोत्सव की जय। एक महत्वपूर्ण चीज, शरीर त्यागने के समय रसिकांत प्रभु जो है बहुत सारे दिव्य लीलाएं की, जैसे नौतम ठाकुर ने भी दुग्ध समाधि लिया था तो ऐसे ही रेमुना के अंदर खिरजोर गोपीनाथ में वो उनको लेके गए और वहाँ पे रसिकांत प्रभु बहुत उद्दंड कीर्तन हो रहा था, 1000 लोग थे वहाँ पे और वहाँ पे जो विग्रह के दर्शन करने गए और फिर जाके पर्दा बंद किया, उसी में समझ गए, वापस नहीं आए वो, सब एक्सक्लेमेशन तो ऐसा बताया जाता है। और रेमुना के अंदर फिर उन्हीं के लिए इसलिए एक उसको समाधि तो नहीं बोल सकते क्योंकि ना उनके पुष्प समाधि भी मुश्किल ही होगा, शरीर तो है नहीं लेकिन फिर भी एक उनके स्मारक बनाया गया, तो अभी भी भक्त जाते हैं वो खीरचौर गोपीनाथ मंदिर के कंपाउंड के अंदर है और उनके तिरुभाव होते ही उनके कई शिष्य भी विरह सहन नहीं कर पाए तो उनके जो 8 शिष्यों ने भी तुरंत ही लगभग देह त्याग कर दिया, तो उनके भी समाधि आसपास में बनाए हैं उसके। तो आप जो वक्त रेमुना जाएंगे या गए हैं तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं, छोटे छोटे वहाँ पे से टोम बनाए गए हैं। श्री रसिकानंद प्रभु की जय। और उनके एक पुष्प समाधि है जो वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर के अंदर श्यामानंद प्रभु की समाधि के साथ पुष्प समाधि के साथ में ही है इस प्रकार से। और राधा श्याम सुंदर मंदिर है वो इस परंपरा के अंदर आते हैं, वो रसिकानंद प्रभु की परंपरा में जो है उनको क्या पालन करके राधा श्याम सुंदर मंदिर की सेवा दी। और जगन्नाथ बाबा जी महाराज तो आप उनका प्रणाम मंत्र हमारे पीछे दोहरा सकते हैं, गौराविर्भाव भूमिस्तम गौराविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जय। जगन्नाथाय ते नमः गौरावृभावभूमेस्त्वम् निर्दिष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। मैं उन जगन्नाथ बाबा जी को सादर नमन करता हूँ जो समस्त वैष्णव समुदाय द्वारा सम्मानित हैं तथा जिन्होंने गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव भूमि की खोज की थी। तो जगन्नाथ बाबा जी आज तो मायापुर में नवदी मंडल परिक्रमा का अधिवास हो रहा है, तो चौथे दिन या तीसरे दिन भक्त लोग जाएंगे कोला द्वीप, जो कि अभी नवदीप शहर है, तो वहाँ पे जगन्नाथ बाबा जी महाराज की भजन कुटीर है और समाधि भी वही है जहाँ तक हमारा ज्ञान है, वहीं पर समाधि है उनकी गंगा के उस पार। और वहाँ पे भक्त लोग जाएंगे, वहाँ पे जगन्नाथ बाबा जी की के प्रति ड्रामा भी करते हैं भक्त लोग और लीला कथा श्रवण करते हैं। तो जो हमने कई भक्तों सुना, विशेषकर जो गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ पे हमेशा प्रवचन देने के लिए आते हैं कई बार, तो उनके मुख से जो सुना वही मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज 144 साल के लिए पृथ्वी पर रहे थे। इनका तिरुभाव भी 1914 के आसपास हुआ करीब। भक्तिरो ठाकुर गौर बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज लगभग लगभग एक ही साल दो साल के अंदर सबका तिरुभाव हुआ था। तो 144 ये रहे थे। मधुसूदन बाबा जी से उन्होंने दीक्षा ली थी और वृंदावन में सूर्य कुंड में वहाँ पे भजन किया करते थे। कृष्ण लीला में वे रसिक मंजरी हैं और सूर्य कुंड पे एक गौड़ के विग्रह की वो सेवा करते थे। वो अभी भी वृंदावन में कहीं गोपाल बाग कोई जगह है, वहाँ सोनार गौरांग मंदिर है, तो वहाँ तो सोनार गौरांग मंदिर है, वहाँ पे उनके वो विग्रह अभी भी हैं जो जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। और जगन्नाथ बाबा जी का ये नियम था, 6 महीना नवदीप धाम में रहते थे, 6 महीना ब्रजमंडल में रहते थे। और जिस समय वो मौजूद थे, भक्तिनो ठाकुर ने उनसे बहुत से शिक्षा ग्रहण करते थे और शुद्ध भक्ति में। और जो स्वानंद सुगत कुंज था वहाँ भी जगन्नाथ बाबा जी आया करते थे, तो वहाँ पे 4 महाभागवत एक साथ हुआ करते थे, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्तिनो ठाकुर, गौर बाबा जी महाराज और विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सचो ठाकुर, तो ये वहाँ पे रहते थे। तो भक्तिनो ठाकुर का कहना है कि उस समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी वॉज अ मोस्ट एडवांस रसिक वैष्णव एंड गौर एंड ब्रजमंडल एंड पुरुषोत्तम क्षेत्र, कि श्री क्षेत्र नवदीप क्षेत्र और ब्रजमंडल के अंदर सबसे उन्नत रसिक भक्त थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है, और इसीलिए भक्तिनो ठाकुर ने उन्हें ये शीर्षक दिया सार्वभौम वैष्णव सार्वभौम, कि सभी वैष्णवों के अग्रगण्य, द चीफ ऑफ द वैष्णवस, उनको ये टाइटल दिया। जब 125 साल के वो हो गए तो उनका शरीर ऐसे मुड़ गया था काफी, और उनकी भारी जो पलकें थी वो भी नहीं खुलती थी, तो दो शिष्य उनकी पलकों को उठाते थे ताकि वो अपने शिष्यालय गिरिराज गोवर्धन की शिला को के विग्रह को तुलसी मंजरी ऑफर कर सके। और उनके ब्रजवासी शिष्य थे, ऐसे तो कई शिष्य थे उनके, लेकिन ब्रजवासी शिष्य थे, उनका नाम था बिहारी, तो वो उनको एक टोकरी में लेके जाया करते थे सब जगह। तो आश्चर्य की बात थी, वो चल नहीं पाते थे। आप चित्र भी देखेंगे उनका हमारे गुरु परंपरा के अंदर, उनके पैर में भी काइंड ऑफ आर्थराइटिस या कुछ तो लगता है ऐसे। लेकिन जब जगन्नाथ दास बाबा जी कीर्तन में जाया करते थे तो 4-4 फीट तक जंप लगाया करते थे, हम भी 4 फीट जंप नहीं लगा सकते, लेकिन जगन्नाथ बाबा जी आध्यात्मिक शक्ति से और बहुत ही उत्साह से वो कीर्तन और नृत्य किया करते थे। अब नित्यानंद प्रभु का एक कीर्तन किया करते, निताई की नाम इन्हें छिरे, की नाम इन्हें छिरे, की नाम दीते छेरे, कि हे निताई, हे नित्यानंद प्रभु, आपने क्या नाम लेके आए हैं आध्यात्म जगत से और क्या नाम आपने सबको प्रदान किया है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इस प्रकार से पूरी रात को कई बार जप किया करते थे और सुबह उठ के विग्रहों को 1108 दंडवत किया करते थे, हालांकि वो चल नहीं पाते थे इस प्रकार से, और वैष्णव सेवा के लिए वो हमेशा हमेशा उत्साहित रहते थे। और उनको बड़ा विश्वास था वृंदावन ब्रज की रज में नवदीप धाम के अंदर और धाम वासियों के ऊपर, दिखा रहे हैं हमको कैसे विश्वास हो सकते हैं। तो एक बार वृंदावन में थे तो एक भंगी से जो सड़क साफ करता है उससे एक उन्होंने रोटी या बाटी, जो ब्रज रोटी होती है, उसको मांगा उन्होंने। तो जब मांगा और उसको पा लिया जो भिक्षा के रूप में, तो वृंदावन के जो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो जगन्नाथ बाबा जी के महाराज में आए, बाबा जी आप तो वैष्णव के अग्रगण्य हैं और हम नहीं चाहते कि कोई आपकी निंदा करे, इससे हमें दर्द होता है, लेकिन हर कोई आपके अगेंस्ट बोल रहा है कि आप देखो भंगी से जो है बाबा ने भिक्षा लिया है, रोटी लिया है वो खा रहे हैं, बाबा जो है सठिया गए हैं, पागल हो गए हैं, तो हम क्या जवाब दें, हमें बड़ा दुख होता है कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, ऐसे कार्य क्यों करते हैं आप। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, देखो आप सब तो विद्वान जन हैं, आप सबको मालूम नहीं कि ब्रज की रज कितनी महान है, ये इतनी इस ब्रज के एक एक धूली के अंदर इतना कृष्ण प्रेम है कि ब्रह्मा जी भी एक ब्रज रज के कण बनना चाहते हैं। तो आप बताओ जो वृंदावन का एक भंगी है वो तो सारा दिन ब्रज की रज को ही साफ कर रहा है, वही उसके शरीर पे लगी हुई है, वही वो सूंघ रहा है और उसी के अंदर प्रैक्टिकल उसका स्नान हो जाता है कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे सबसे शुद्ध व्यक्ति कौन होगा, उस भंगी से अधिक कोई शुद्ध व्यक्ति होगा क्या जो पूरे ब्रज रज से प्रतिलिप्ता हुआ है। तो जो है जैसे ऐसे बोला सब संतुष्ट हो गए कि हाँ बाबा जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि, और सब शांत हो गए कि बाबा जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि ब्रज का जो भंगी है वास्तविकता बहुत शुद्ध है क्योंकि ब्रज की रज से वो लिपटा हुआ है। तो ऐसे ऐसे एक बार नवदीप धाम के अंदर जब वो प्रसाद पाते थे, कभी बिहारी उनको शिष्य बिहारी उनको प्रसाद देते थे, प्लेट में होता था, तो जय श्री गौरताय की जय, श्री रघुनाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण की जय, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। तो क्या उनकी प्लेट में प्रसाद रखा था तो कुछ पिल्ले छोटे छोटे ऐसे कुत्ते वहां पे आ गए और वो उनकी प्लेट से खाते थे। तो बिहारी को बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि ये क्यों बाबा जी महाराज की प्लेट से खा रहे हैं इस प्रकार से, तो वो भगा दिया उन्होंने उनको कुत्तों को। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने बिहारी को अपने सर्वेंट को डांटा, और तुम जानते नहीं ये जो पिल्ले हैं ये धामवासी हैं, तो ये कोई साधारण जीव नहीं है, तो तुम इनको बुला के लेके आओ, जब तक ये मेरी प्लेट से नहीं खाएंगे मैं प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। तो फिर बिहारी को लेके आए वापस पकड़ के और फिर प्रसाद, हम बाबा जी माते किसी कार्य को इमिटेट नहीं करते, नकल नहीं कर सकते है कि नहीं, हमें धामवासियों को पूर्ण मान देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम जब कुत्तों को बुलाएं प्रसाद खिलाएं है कि नहीं, तो कोई नकल नहीं करनी, हमें अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है उनके पद चिन्हों का, कि धामवासी चाहे पतित हो या कुछ भी हो तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे दूर से सम्मान करें, कभी कभी एसोसिएट करना मुश्किल हो जाता है उनके भाव को देख के। जैसे वृंदावन में जाएंगे तो ब्रज में तो ऐसे बोलते हैं, ब्रज का ठाकुर भी टेढ़ा, ब्रज की बोली टेढ़ी, फिर हर बात में गाली निकालते हैं लोग है कि नहीं, ब्रज की ठेठ भाषा में देखेंगे तो हर बात में गाली निकालते हैं, तो ब्रजवासियों के भाव को, लेकिन कृष्ण कैसे समझते हैं, बोले हाँ ये तो मेरी वंदना कर रहे हैं है कि नहीं। तो इसीलिए हमें नकल नहीं कर सकते उनकी किसी भावना को, लेकिन हमें जो है उनका आदर पूरा करना चाहिए, खाली इस बात के लिए कि धाम के वासी, उन्होंने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ तो कार्य किया रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका संग करें, सिद्धांत का पालन करें। ऐसे तो 142 साल की जब उनकी उम्र थी तब उस दौरान ठाकुर भक्तिनाथ केदारनाथ दत्त ने जो है जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थली योगपीठ का खोज किया था। उससे पहले तक मानना था कि उनकी गंगा के इस पार उनका जन्मभूमि है, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने फाइंड आउट किया पुराने नक्शों से और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों से, और पता किया कि यही हो सकता है महाप्रभु का जन्म स्थान, अब इसको सर्टिफाई कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इस समय सबसे महान वैष्णव जी को उनको लेके आया जाए। तो फिर बाबा जी महाराज को वो लेके आए, जब वो लेके आए जैसे ही तो वहां पे गौर प्रेम से वहां जगन्नाथ बाबा जी एकदम मदोन्मत्त हो गए और जोर जोर से वो पता कूदने लगे, ऐसा बताया जाता है कि वो तो प्रैक्टिकली 10-12 फीट तक कूद रहे थे वहां पे और बोल रहे थे कि यही तो निमाय जन्मस्थान, यही तो निमाय जन्मस्थान कि ये जो यही वास्तविकता में निमाय का जन्मभूमि है। तब सर्टिफाई हो गया कि यही महाप्रभु का असली जन्मस्थान ये है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज कई शिष्य थे, उनको ये मुख्य शिक्षा वो दिया करते थे। पहली, यू मस्ट अवॉइड वुमेन, मैन हू एसोसिएट विद वुमेन, और विद द मैन हू इन एनी वे एसोसिएट विद द मैन हू एसोसिएट विद द वुमेन, कि आप स्त्री स्त्री संगी से दूर रहिए, एक इनको ये करते थे। तो पुरुष के लिए स्त्री है वैसे स्त्रियों के लिए पुरुष है कि नहीं, तो इसका मतलब इस प्रकार से है, इसको इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए कि स्त्रियों में गड़बड़ है, लेकिन जो है अपोजिट सेक्स जो आपस में होता है, प्रभुपाद कहते थे मैन इज गुड वुमेन इज गुड बट अ कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड, है ना, बोथ आर सपोज अट्रैक्टेड टू कृष्णा नॉट टू ईच अदर, स्त्री और पुरुष दोनों का धर्म है भगवान कृष्ण आकर्षित होना, एक दूसरे आकर्षित नहीं होना है कि नहीं, कि भगवान से आकर्षित हो। तो वो इस शिक्षा को एक दिया करते थे। दूसरा वो बोलते थे कि जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए आपको हरिनाम नियमित रूप से और स्टेडफास्टली निरंतर और कंसिस्टेंसी के साथ स्टेडीनेस के साथ करना चाहिए। स्टेडीनेस इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट मस्ट बी मेंटेन इवन एट द कॉस्ट ऑफ वन्स लाइफ। जो स्टेडीनेस को कैसे बोलते हैं, दृढ़ता इतनी महत्वपूर्ण है, जैसे बोलते प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा से आए, कि तो ऐसे नियमों का कोई किसी ने नियम धारण किया है तो चाहे प्राण चल जाए लेकिन नियम का पालन करना चाहिए। जैसे हमें दीक्षा के समय गुरु को वचन दिया कि 16 माला करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे इत्यादि, तो इतना पक्का होना चाहिए भक्त को कि उसको बिना किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा शिक्षा देते थे, चैतन्य महाप्रभु को कभी मत भूलो जो कि कृपा महावदा न्याय अवतार है। कृष्ण तो एक राजा के समान है और जिसने कोई गलती किया है तो उसको निर्णय करते हैं, वो राजा जो होता है वो कहता है ये अपराधी है ये सही व्यक्ति है, और इसीलिए कृष्ण तो जस्टिस अर्थात न्याय देने में रुचि रखते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो कोई अपराध नहीं देखते, तो वो जो है प्रेम देने वाले हैं, वो कृपा बांटने वाले हैं। कृष्ण तो न्याय बांटने वाले हैं लेकिन महाप्रभु प्रेम बांटने वाले हैं, ऐसा उनका कहना था। तो इसलिए कहते थे कि कृष्ण कीर्तन से महत्वपूर्ण है गौर कीर्तन करना, ऐसा बोलते थे वो। और इसलिए वो गौर कीर्तन का मतलब है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादेव गौर भक्तवृंद। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से, अच्छा ये मंत्र भी उन्होंने दिया है ये पंचतत्व महामंत्र जो है, तो ऐसा ही बोला जाता है कि ये मंत्र महा जो पंचतत्व महामंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा था कि जब 1000 गुना शक्तिशाली है तो हम इस मंत्र का जाप क्यों नहीं करते, तो प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया क्योंकि महाप्रभु चाहते थे हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करें, इसीलिए हम 3 बार ही जब भी कीर्तन करते हैं तो 3 बार इस मंत्र का जाप करते हैं जय श्री चैतन्य, इससे ज्यादा नहीं, मतलब 1, 2 या 3 उससे ज्यादा बार नहीं करते, क्योंकि यही शरण प्रभुपाद जी ने दिया था। ऐसा नहीं कि कीर्तन मेला हो रहा है तो 12 घंटे जय श्री चैतन्य इसी का कीर्तन चल रहा है, कीर्तन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन चाहते थे इसीलिए हम लोग उसका पालन करते हैं। और चौथा फाइनली, कृष्ण द्वापर युग के अवतार है, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार है, वो ऐसा कहते थे। तो कहते थे इसीलिए जिस युग में हम रहते हैं उसी युग के अवतार का नाम और गुणगान करना चाहिए, है कि नहीं। जिस प्रकार से एक राजा कहीं राज्य में रहेंगे तो उसी राजा गुणगान करेंगे, जो 4 पीढ़ी पहले राजा हुआ था उसका गुणगान करेंगे, ऐसा उनका तर्क था। इसीलिए जय सचंदन गौर हरि, जय सचंदन गौर हरि, वो इसका कीर्तन करते थे, ऐसा उनका भाव था। जय श्री जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज की जय। अच्छा इनके बारे में भी एक पुस्तक है, वो मेरे को मिली नहीं, बहुत अच्छी खासी उसका डिटेल्स है, बहुत सारे पास टाइम है लीला वगैरह, लेकिन पहले पढ़ा था लेकिन कल मिले नहीं तो इसलिए उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने सोचा कि इतना ही मेरे को विषय था, तो आज के जो श्लोक की चर्चा करने, खासकर रसिकांत को अपने हाथी का उद्धार किया तो गजेंद्र मोक्ष लीला का उद्धार कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक गलती हो गया, श्लोक नंबर 10 लिखा था, ये 11 और 12 लिखा गया है बोर्ड के ऊपर somehow। anyway, सातवां कल 6ठा श्लोक लिया था स्वर्गपति प्रभु ने, 7वां 8वां 9वें का तात्पर्य नहीं है तो मैं उनको पढ़ देता हूँ उनके अनुवाद को केवल, और फिर इस श्लोक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस प्रसंग के ऊपर। 7वां इस प्रकार से है, सवई पूर्वम, ये गजेंद्र का इतिहास है इसके अंदर, ये 3 श्लोक और उनके हुआ क्या था। सवई पूर्वम अभूत राजा पांडयो द्रविड़ सप्तमः इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णुवत परायणः। यह गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविड़ देश अर्थात दक्षिण भारत प्रांत के पांड्य नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वह इंद्रदुम्न महाराज कहलाता था। इंद्रदुम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और मलय पर्वत चला गया, जहां उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सिर पर जटाएं थी और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वह मौन व्रत धारण किए हुए भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। जब इंद्रदुम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे तो अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि एक राजा इंद्रदुम्न एकांत स्थान में बैठकर मौन साधे हैं और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। अब मैं 11वां लेना नहीं चाहता, 11वां 12वां श्लोक, क्योंकि परसों अमोघ लीला प्रभु आएंगे क्लास लेने के लिए और बहुत तो उसका तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, और 10वें को फिर मैं ही पढ़ देता हूँ, उसके शब्दार्थ आप रिपीट कर दीजिएगा। तस्मा इमाम श्याम पादसा तस्याम इमाम शापम अदातसाधु अयम दुरात्मा कृतर्बुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशताम तमिस्त्रम यथा गज शब्द मति स एव। तब शब्दार्थ हमारे पीछे दोहरा लीजिए। तस्मै महाराज इंद्रद्युम्न को इमं यह शापम शाप अदात दे डाला असाधु अभद्र अयम यह दुरात्मा नीच व्यक्ति अकृत अशिक्षित बुद्धि ही उसकी बुद्धि अद्य अब विप्र ब्राह्मण का अवमंता अपमान करने वाला विषताम प्रवेश करे तमिस्रम अंधकार में यथा जिस तरह गजह एक हाथी शब्दमति ही कुंद बुद्धि वाला या कम बुद्धि वाला सह वह स एव निसंदेह पोजेसिंग ब्लंट इंटेलिजेंस। अनुवाद आप हमारे पीछे दोहराइए। तब अगस्त्य मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला, इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। तात्पर्य इस जीवन में ऐसी भक्तियां सब प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वह कठोर श्रम कर सकता है और प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार तथा बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी वह मनुष्य का नौकर बनकर काम करता है। अगस्त्य मुनि ने यही ठीक समझा कि इस राजा को हाथी बनने का श्राप दिया जाए, क्योंकि इस शक्तिशाली राजा ने मेरा स्वागत उस रूप में नहीं किया जैसा कि ब्राह्मण का होना चाहिए। यद्यपि अगस्त्य मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न को हाथी बनने का शाप दे डाला, किंतु यह शाप अप्रत्यक्षः एक वरदान था, क्योंकि हाथी का जीवन बिताने से उसके पूर्व जन्म के पापों के सारे फल समाप्त हो गए। हाथी जीवन का अंत होते ही वह भगवान जैसा शरीर पाकर उनका पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया गया। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। तो ये जो पूरा प्रसंग है गजेंद्र का, और अगले 2-3 क्लास के अंदर 3-4 क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कई सारे श्लोक के तात्पर्य नहीं है। और ये श्लोक के 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं चर्चा थोड़ा सा करूंगा, और कुछ एक दो महत्वपूर्ण इस लीला से भी। पहला पॉइंट एक वो ये कि कल सरस्वती पुनः बोला, बाद में उनकी चर्चा कर रहा था, मैंने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लगता है पूरे भागवतम के सिद्धांत से, कि किस प्रकार से सम्माननीय व्यक्तियों का, वरिष्ठों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का, वैष्णवों का सम्मान होना चाहिए। यदि सामान्य सम्मान नहीं होता, हम भागवत में दोनों उदाहरण देखते हैं किस प्रकार सम्मान नहीं किया गया तो क्या हुआ, किस प्रकार सम्मान किया गया। तो मैं आशा करता हूँ कुछ लीलाएं जो मैं उदाहरण दूंगा आपको पता होंगे, उनको डिस्क्राइब नहीं करने वाला। नेगेटिव लीलाएं, कल कुछ सरपति ने कुछ बोली थी, मैंने कुछ और उसमें ऐड किया है कि उससे शिक्षा क्या मिलती है कि यदि एक सम्माननीय व्यक्ति का सही से सम्मान नहीं किया जाए तो यदि वह क्रोधित होता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि वह ऐसा क्रोध हो जाता है, और हमारे दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए एज अ सब, खुद सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए लेकिन सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान भली प्रकृति करना चाहिए। तो जैसे नैमिषारण्य के अंदर रोम हर्षण सूत थे, बलराम जी प्रवेश किए, वो व्यास आसन उनको प्रणाम तक नहीं किया, अभिवादन भी नहीं किए, खड़े होना तो दूर की बात, बलराम जी ने काश इनका लिया और उनका वध कर दिया, है कि नहीं। कि तृणाद पिछली चेहरा कि एक दिन से ही उसका वध कर दिया, क्यों, क्योंकि वो बलराम जी बोल भी रहे हैं इसके बारे में, रोमहर्षण सूत के बारे में, कि वो दो श्लोक के अंदर, एक श्लोक उनका सौभाग्य बताते हैं, दूसरे श्लोक उनका दुर्भाग्य बताते हैं रोमहर्षण का, कि ये व्यासदेव का शिष्य था स्वयं, इतना उसने शास्त्र पान किया लेकिन पठन किया, इसको दीर्घायु प्राप्त थी लेकिन वृथा पंडित मानिनः, लेकिन अपने आप को नटस्य एव आत, इस प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक तोते के समान, एक नाटक का तो डायलॉग रट के आता है, ऐसे शास्त्र इसमें पढ़े हैं लेकिन तोते के समान बोल रहा है कि उसको रियलाइजेशन नहीं है उसका, है कि नहीं। फिर दूसरा तो हम अगस्त्य मुनि का यहाँ पे देखते ही हैं, उन्होंने श्राप दे दिया इंद्रदुम्न महाराज को, और तीसरा हम देखते हैं बृहस्पति इंद्र की सभा में आए थे, इंद्र ने स्वागत सत्कार नहीं किया, उनको सीट नहीं दिया प्रॉपरली, तो चले गए वहां से, और उनके अपमानित होने जो अपराध हुआ गुरु के प्रति, उसके कारण इंद्र और सभी देवता अपनी शक्ति खो बैठे और बाद में उनको बड़ा तकलीफ हुआ, उतना प्रभाव छोड़ गए। चौथा हम देखते हैं भृगु मुनि जब ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए, जब उनको ये सेवा दिया या उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे प्रेजेंटेटिव सुप्रीम कौन है, तो भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उनके पिता भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, गुरु भी हैं, तो उनको जाके लेकिन भृगु मुनि ने उनको प्रणाम नहीं किया, टेस्ट करने गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी तुरंत थोड़ा क्रोध आ गया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, ठीक है बेटा है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसको सत्कार करना चाहिए। तो फिर भृगु मुनि देखे कि क्रोध आ गया है तो चले गए वहां से। फिर हम देखते हैं पहले स्कंद के अंदर भागवतम तो प्रकट ही एक श्राप के कारण हुई जो है, कि परीक्षित महाराज गए थे जंगल के अंदर, वहां शमी ऋषि बैठे थे लेकिन राजा का सत्कार नहीं किया, तो दैव प्रभाव के कारण एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल के वो आ गए। शमी ऋषि तो ध्यान मग्न थे भगवान में। फिर नल कुंवर मणिग्रीव, उनको नारद मुनि ने श्राप दे दिया, जय विजय ने रोक दिया एक दरवाजे पे, तो सिक्योरिटी को श्राप दे दिया चतुष कुमारों ने। तो कई बार ये बहुत जो है इससे एक शिक्षा मिलती है कि जो है अतिथि का या किसी भी भद्र व्यक्ति का बड़े सत्कार करना चाहिए, इसमें कभी आलस नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि करेंगे तो उनके हृदय से आशीर्वाद मिलेगा, नहीं करेंगे तो उनके हृदय से दूसरे प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा, श्राप भी मिल सकता है। तो आप इसका सिद्धांत क्या है, चाणक्य प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं, और जहां तक हमने सुभाषितानीय चाणक्य नीति में कहीं पढ़ा था कि चार प्रकार से किसी अतिथि का सत्कार होना चाहिए, चार चीजें होनी चाहिए। पहला, जब कोई अतिथि आए तो बैठने के लिए आसन, उसको जगह देना चाहिए बैठने के लिए। दूसरा है कुछ पानी, उसको पीने के लिए, कहीं गर्मी से कोई आया है तो पीने का जल देना चाहिए। तीसरा मुझे पूरा याद नहीं, जो शायद कुछ प्रसाद, थका हारा होगा भूखा होगा, कुछ प्रसाद लेने के देना चाहिए। और बोला कि यदि अब देखिए बैठने के लिए जगह तो किसी में कीमत, इतना जगह तो थोड़ा होता ही है बैठने के लिए, एक आदमी को क्या जगह लगता है, थोड़ा जगह दे सकते हैं पानी में, अभी तो चलो बिस्लेरी का कीमत लगता है, आरओ का पानी लगता है, लेकिन वैसे कुएं से निकालने में पानी का कोई कीमत तो नहीं होता, और थोड़ा प्रसाद कहीं से भी फल फूल तो मिलता ही है, पेड़ के ऊपर इतना रहता है तो आप जो है वो देने के लिए। लेकिन कोई इतना गरीब है उसके घर में जगह भी नहीं बैठने के लिए, पानी भी नहीं दे सकता, खाने को नहीं दे सकता, तो एक चीज तो जरूर देनी चाहिए, वो क्या है, मीठे वचन, मीठी वाणी, कम से कम उससे उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो ये चार तरीकों से, और प्रिंसिपल क्या है, द गेस्ट शुड फील होमली। पुराने जमाने में ऐसा था, कोई दुश्मन भी घर में आता था यदि, तो उसका बड़ा सत्कार करते थे, एक वैदिक नियम है अतिथि देव भव, अतिथि देव देवता के समान होना चाहिए। अतिथि का मतलब ये है जो बिना अतिथि के आए, तो बिना बताए आए और तभी भी आपको स्वागत करने में तल्ली हो तो वो बात मानी जाती है। तो एक वरिष्ठ का सम्मान बहुत अच्छे प्रकार से करना चाहिए ताकि उनको जो है तब उनके हृदय से आशीर्वाद आएगा, है कि नहीं। नहीं तो लगे घमंडी व्यक्तियों को आशवा देगा, उसको चाहिए नहीं है कि नहीं। लेकिन प्रिंसिपल ऐसा हमने मनु संहिता से सुना था भक्तों से कि यदि कोई वरिष्ठ हो तो कितना, एक वरिष्ठ वैष्णवों के केस में, खासकर वरिष्ठों के केस में भी मान लीजिए वो आप उनके जहाँ वो सोए हैं आप उस स्तर पर मत सोइए है कि नहीं, उसके नीचे सोइए। जैसे भरत जब रामचंद्र वनवास को गए तो पता रामचंद्र जमीन पे सोएंगे, तो भरत ने जमीन के अंदर एक गड्ढा किया और उसमें सोते थे और बोला क्या क्या मैं उनके समान स्तर पे नहीं सो सकता। और भरत जो है देखा वो जंगल में रहेंगे तो मैं नगर में कैसे जा सकता हूँ, तो वो भी अयोध्या के बाहर रहते थे और जटावंगा सा धारण किए थे और बोले राम तो कंदमूल खाएंगे तो मैं तो कंदमूल भी नहीं खा सकता, उनसे ज्यादा ऑपुलेंट डिश नहीं खाना चाहिए। तो वो क्या करते थे बारले ज्वार ज्वार जौ जौ सॉरी जौ या ज्वार जो भी ऐसा उसके अंदर गौमूत्र मिलाकर वो 14 साल तक खाए हो, क्योंकि उनके तो ऐसा वरिष्ठ के लिए सम्मान जो है इतना आदर की भावना ऐसे होना चाहिए। या यदि वो ऊंचे बैठे तो उनके समान सर पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए, ऊंची सर उनको पीछे से आवाज नहीं देना चाहिए। और मान लो वो सीढ़ी पे खड़े हैं तो हमें उसके निचले स्तर पे खड़ा होना चाहिए है कि नहीं, ताकि ये आदर के कुछ तरीके ऐसे बहुत सारे हैं। उनके सोने से बाद सोना चाहिए, उठने से पहले उठना चाहिए है कि नहीं, उनके खाने के बाद शुरू करना चाहिए, उनके खाने के पहले खत्म करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सटल डिटेल्स हैं और ये भद्र समाज के और वैष्णव समाज के वरिष्ठों को जो है आदर करने का सत्कार होता है। आजकल तो कुछ होता नहीं, मॉम डैड बोलते हैं लोग है कि नहीं, यू नो मम्मी इजिप्ट के अंदर तो मम्मी तो बोलते थे जो कब्र बनाते थे उसको, और हमें कोई बोला था डैड मतलब डैड यू नो लाइक ऐसे यूज करते हैं एटसेट्रा। लेकिन वास्तव में बड़े आदर सम्मान की रीति होती थी हमारे वैदिक सभ्यता के अंदर। श्रीमद भागवत में दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं किस प्रकार से सही प्रकार सत्कार किया गया है। तो वही नैमिषारण्य के अंदर जहाँ रोम हर्षण सूत का वध हुआ, वहीं उनके बेटे सूत गोस्वामी को बाद में उग्र शवा को बैठाया गया। शौनक आदि ऋषि हैं वो उनसे सुनने के लिए बड़े तत्पर थे और वो जानते थे कि ये बड़े महान हैं, तो उनका वो स्वागत करते हैं जब सूत गोस्वामी वहां मौजूद होते हैं। कैसे तो अखल पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युदा यानि वेद वेदां श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदुः वेत्थं त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुव गुह्यम् अप्युत। ये 3 श्लोक बोलते हैं सूत गोस्वामी का स्वागत करते हुए कि हे सूत आप क्या हो, हे पाप रहित हो, आप अनग हो, आप सभी पुराण और इतिहास जानते हो, आप धार्मिक धर्मशास्त्रों को अच्छे से पढ़े हो, उनके निष्कर्ष को जानते हो और आपने उन्हें निर्देशन में पढ़ा है अधीतानी और उनकी व्याख्या भी की है, और आप भगवान व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हो और आप उन मुनियों को भी जानते हो, उनसे आपका संग है जो भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है, और इससे बड़ी आपकी क्वालिटी क्या है, आप विनीत हैं, और आपने गुरुओं को के एक सौम्य शिष्य आपके गुरुओं ने आपको आशीर्वाद दिया है क्योंकि आप एक बहुत ही सबमिसिव डिसाइपल हैं, इसीलिए आप हमें वो बताइए जिसे आपने सीखा है उनसे ज्ञान से सीखा है। और बाद में बोलते हैं सूतम जाना सी भद्रम थे, हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, ऐसे उनको बड़ा ऊंचा सीट देंगे। आप सोचिए कोई भक्त आता है, जब हम यहाँ पे कोई भक्त हम मंदिर में भी आते हैं उनका सत्कार करते हैं तो उन्हें बड़ा ग्लोरिफिकेशन इसीलिए करते हैं, सो दे फील वेरी होमली, दे फील वेलकम कि हाँ उसकी आवश्यकता है, तब उनके हृदय से असली उद्गार निकल के आता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए भी वास्तविकता में एक फैमिली एटमोसफेयर बहुत जरूरी है, जहाँ पे सब एक स्ट्रेंजर्स हों तो वहाँ पे कोई हृदय की बात नहीं कर सकता। हाँ ठीक है शास्त्र पढ़ के शास्त्र को कुछ बोल देगा लेकिन अपने हृदय से कुछ रिलैक्सेशन ज्यादा नहीं बोल सकता व्यक्ति, लेकिन जहाँ पे संबंध हो, जहाँ पे उनकी यू नो एक प्रकार से जहाँ पे पीपल वॉन्ट देम बेसिकली वॉन्ट टू हियर फ्रॉम देम, तभी व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं। तो कोई महान जन आए तो सुनने की लालसा और उनसे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं तब अपने हृदय की बात हमें बड़े अच्छे से प्रकट कर पाएंगे। ऐसा ही हम 3रे स्कंद के अंदर देखते हैं कि कर्दम मुनि के पास आते हैं स्वयंभू मनु। कर्दम मुनि एक ब्राह्मण है, स्वयंभू मनु राजा है पूरी पृथ्वी के, इतने महान राजा है। बाद में कर्दम मुनि उनके दामाद बनेंगे और जो स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से उनका विवाह होगा। तो जब ये मिलने के लिए जाते हैं बिंदु सरोवर के अंदर बैठे थे कर्दम मुनि तो, और समाधिस्थ बैठे थे वो, और स्वयंभू मनु वहां पहुंचते हैं तो राजा को अपने, और आते हैं तो स्वयंभू मनु क्या करते हैं क्योंकि वो क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सत्कार करते हैं। क्या बोल रहे हैं? उनका सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उनका स्वागत किया। राजा के अनुसार तो नहीं कर सकते, क्योंकि खुद तो ब्राह्मण है, कुटिया में रहते हैं, तो उतना ठाट बाट से तो नहीं कर सकते, लेकिन यथोचित कि किस प्रकार से समय के साथ में करना चाहिए। ऐसा भीष्मदेव जब बाणों की शैया में थे तो ऐसा देश काल विभाग वित्त उनको बोला गया, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के एक्सपर्ट ज्ञाता थे वो। उस समय जब उनका तिरुभाव होने वाला था तो भगवान कृष्ण, पांडव, व्यासदेव और जाने नारद मुनि कौन कौन कौन, तो सब बड़े बड़े लोग वहां पे आए थे, सबका वो सत्कार करते हैं भीष्मदेव। जहां वो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, केवल एक ही चीज थी उनके पास, वो क्या थी? वाणी और उनके जेस्टर्स। खाली वो मुख के कुछ भंगिमा से बता सकते हैं कि उनका स्वागत कर रहे हैं। देश काल विभाग वित्त, इसलिए उनके बारे में बताया गया है ये। तो कर्दम मुनि यानी वे उनको बैठाते हैं, मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयं मनु बैठ गए और शांत बने रहे। देखिए, मुनि ने सम्मान किया तो राजा शांत बैठ गए, नहीं होते तो क्या होते, एक मरा हुआ सांप उनको भी डाल देते शायद वो, है कि नहीं? सम्मान देंगे तो व्यक्ति शांत रहेगा, नहीं देंगे तो भड़केगा स्वाभाविक रूप से, है कि नहीं? इसलिए सम्मान देना एक बहुत बड़ी कला है। आप व्यक्ति को जीत सकते हो, कैसे? उसका स्वागत करके, क्योंकि विनम्रता से हम व्यक्ति को जीत सकते हैं, और कोई तरीका नहीं जीतने का। और फिर वो जो कर्दम मुनि ऐसे क्या शब्द बोल रहे हैं, हे भगवान, आपका यह भ्रमण निश्चित रूप सज्जनों की रक्षा और अशुभ के वध के उद्देश्य से हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षा संभी से संबंधित हैं। क्योंकि आप क्षत्रिय हैं तो आप सज्जनों की रक्षा करने के लिए आप निकले हैं, और बोल रहे हैं आप नरदेव हैं, ऐसे गुणगान करते हैं जब, तो वो बोलते हैं मैं आपके यहां आने का कारण पूछ रहा हूं। तो जब ऐसा हुआ तो राजा, व्हेन यू ग्लोरीफाई समबडी बाय डिफॉल्ट ही बिकम्स लिटिल हम्बल, यू नो, ही बिकम्स लिटिल शाय। तो राजा भी, जो राजा स्वयंभू मनु थे, वो भी थोड़े से हिचकिचाने लगे, संकोच करने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों का गुणगान किया अगले चार पांच श्लोक के अंदर, कि ब्राह्मणों के अंदर क्या शक्ति है, ब्राह्मणों का क्या योगदान है। इज अ म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, बिटवीन टीचर्स एंड मैनेजर्स, यू नो, किस प्रकार से दोनों को देखना चाहिए। एक भगवान की रक्षा की शक्ति से, एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंसी से एम्पावर्ड है, तो दूसरे भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी से एम्पावर्ड है, जो ब्राह्मण गण है, नॉलेज पोटेंसी से। तो ये सत्कार यहाँ भी हम देखते हैं। चौथे स्कंद के अंदर भगवान की शक्ति वेश अवतार पृथु महाराज राजा है, वो एक पूरे एरिना के अंदर अपने पूरे प्रजा को इकट्ठा करके उन्हें उपदेश दे रहे थे। जैसे मान लीजिए मोदी का भाषण हो रहा हो तो लोग सुनते हैं, उस प्रकार से वहां पे सबके सामने कौन प्रकट होते हैं? चतुष कुमार। चार कुमार जो हैं जब प्रकट होते हैं तो ये पृथु महाराज, छोटी साहब राजा है, सबके सामने जो है, सब सारी प्रजा पृथु महाराज के उपदेश खत्म होने के बाद में तालियां बजा रही, साधु साधु कर रही हैं और उनका गुणगान कर रही है। उस समय के चार कुमार वहां पे आते हैं, पांच वर्ष के छोटे बालक नग्न घूम रहे हैं, लेकिन सूर्य के समान तेजस्वी। लेकिन वो पृथु महाराज चारों कुमारों को देखकर उनके स्वागत के लिए आदुर हो उठे, अपने पार्षदों समेत वो ऐसे तेजी से उठकर खड़े हुए मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। और ऋषिगण, जब वे महान ऋषिगण शास्त्र भी ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, अपने आसने बैठाया उन्होंने प्रैक्टिकली, तो राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर नतमस्तक हुआ। देखिए, सारी प्रजा के सामने अगर राजा किसी को इस प्रकार से कर रहा है तो लोगों पर क्या इंप्रेशन जाएगा? हमें भी इनकी पालन करना चाहिए, इनको साक्षात्कार करना चाहिए, इनकी आज्ञा पालन करना चाहिए। हमारे महान राजा इतना महान है और वो जिनकी पूजा कर रहा है वो कितने महान होंगे। और फिर चारों कुमारों की पूजा की, उनके चरणों को धोया, उस जल को अपने सर पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। और फिर राजा उनका मीठे वचनों से गुणगान करते हैं उनका, है कि नहीं? तो इस प्रकार से गुणगान होना चाहिए। और एक महान कथा आती है, भगवान कृष्ण स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते हैं, किसका स्वागत करके? सुदामा का। ये चित्र है किस प्रकार से कृष्ण स्वयं इस प्रकार से बेड से खड़े हो जाते हैं, सुदामा का आलिंगन करते हैं, उनको अपने साथ बैठाते हैं, रुक्मिणी देवी चावल ढुलाने लगती है, सब महल के लोग देख रहे होते हैं, ये फटा ब्राह्मण, फटेहाल ब्राह्मण है कौन ये, है कि नहीं? तो कैसे किसी, क्योंकि वह ब्राह्मण है और भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे सत्कार करना चाहिए। उनका चरण धोते हैं भगवान, वो सर अपने जल अपने सर पर छिड़कते हैं। तो ऐसे सत्कार करना चाहिए। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है, और ये प्रश्न पूछा भी गया था यहाँ पर, कि ऐसे महान ऋषि हैं तो उनका उनको क्या पड़ी है ये ईगो के रिस्पेक्ट होने के लिए कि हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया तो श्राप दे देते हैं, है कि नहीं? तो एक उत्तर तो दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर भी है ये, कि ये कमी देखने का ठेका हमें तो नहीं दिया गया, किसने किसको श्राप दिया, क्यों दिया, यानी अगस्त ऋषि में कमी है, देवल ऋषि में कमी है, ये कमी देखने का ठेका हमें तो नहीं दिया गया। लेकिन एक दूसरा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, कि ऐसे ब्राह्मण और ऋषिगण क्यों ऐसा श्राप देते थे, ये सिखाने के लिए किस प्रकार मेरा नहीं अपितु ब्राह्मणों का सत्कार होना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो एक बार मायापुर में, जहां तो मेरा ख्याल है मायापुर या जुहू, तो माय नॉलेज मायापुर के अंदर श्रील प्रभुपाद के पास उनके शिष्य आए और बोले, प्रभुपाद विल मेक योर रूम एट दिस फ्लोर लाइक दिस, ये रूम हम आपके लिए ऐसा भव्य रूम बनाएंगे, एक बहुत ही फर्स्ट क्लास रूम बनाएंगे। प्रभुपाद सेड नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस कुटीर ऑल्सो, यू नो, मैं जब उनकी झोपड़ी में उस समय रहा करते थे, बिल्डिंग नहीं बनी थी, नो नो इट इज आई कैन स्टे हियर, आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं बहुत यहाँ पे। बोले, नहीं प्रभुपाद आप बताइए क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, फैसिलिटीज कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। बोलो आई एम वेरी कंफर्टेबल। फिर तो कोई एक वरिष्ठ ने बोला, प्रभुपाद विल मेक अ रूम टू शो द होल वर्ल्ड हाउ स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी वर्शिप्ड लाइक दैट, एंड देन प्रभुपाद सेड यस देन यू मेक द रूम देयर लाइक दैट। किस प्रकार एक आध्यात्मिक गुरु का सत्कार होना चाहिए, जब शिष्य ने बोला प्रभुपाद हम ऐसा रूम बनाएंगे कि दुनिया को सिखा सके, आध्यात्मिक गुरु का कैसा सम्मान होना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा ठीक है बनाइए, सबसे फर्स्ट क्लास रूम बनाइए, आई विल स्टे, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी को दिक्कत नहीं कि कुटीर में रहने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का सम्मान, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव यतैव सद्भिः, कि गुरु का सम्मान कैसे होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे जो ब्राह्मण हुआ करते थे सम्मान, इसीलिए कि ब्राह्मणों का सम्मान कैसे होना चाहिए, इसीलिए ये प्रसंग भागवतम के अंदर भी है। हमें नहीं देखना चाहिए कि नारद मुनि को क्रोध आ गया, अगस्त मुनि को क्रोध आ गया, देवल मुनि को क्रोध आ गया, इसको क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया, चतुष कुमार ने श्राप दे दिया, वो नहीं देखना चाहिए। और तीसरा पार्ट, कि ऐसे महान ऋषियों के चाहे आशीर्वाद और श्राप हो, एट द एंड सम हाउ द अदर, सब लीलाओं में देखेंगे वो हमेशा बेनिफिशियल ही रहा है, क्योंकि महान ऋषि ने श्राप दिया है तो वो तो भगवान से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए वो तो भगवान के एक कठपुतली के समान है जिनको भगवान ही दौड़ा रहा है, भगवान ही रेगुलेटर है, भगवान रेगुलेट कर रहे हैं उनको। तो जब वो श्राप देते हैं, चाहे किसी भावना में आके दें, जिसको श्राप मिलता है उसका तो उद्धार होता ही होता है, जैसे इसका उद्धार हो गया जो क्रोकोडाइल बना था, हुहू नामक गंधर्व, कहाँ गंधर्व था, इसका भगवान सिंह रहित पाप रहित हो गया वो बिल्कुल, ऐसे नलकोर मणिगिरी का उद्धार हो गया, ऐसे ही चित्रकेतु महाराज का उद्धार हो गया। समय लगता उन्हें गंधर्व योनि में थे, वो भक्ति सामी सिंधु में बताया जाता है, जीव गोस्वामी बता रहे हैं उसे कमेंट्री के अंदर, कि चित्रकेतु महाराज की एक इच्छा थी, वो स्त्रियों का संग करना चाहते थे, स्त्रियों की संगत में रहना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, और भगवान बोल रहे हैं जो मेरा मेरी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूरी करता हूँ। तो शुद्ध हो गए, लेकिन वो गंधर्व उस यान के अंदर स्त्रियों के साथ भगवान का गुणगान कर रहे थे, विद्याधर लोक के स्त्रियों के साथ में, है कि नहीं, गुणगान कर रहे थे, ऐसा नहीं कि यौन आकर्षण था वहां पे, लेकिन उनकी एक इच्छा थी पहले, तो वो इच्छा पूरी हुई, लेकिन वो चित्र के तो मान को समय लगता है अभी वापस भगवान से रिवर्ट हो गए। पार्वती ने श्राप दिया तो खटाक बिल्कुल, यू नो, शॉर्टकट एकदम भगवान के पास पहुंच गए। ये हाथी इंद्रदेव मार से समय लगता उन्हें, लेकिन हाथी बनने के बाद में एक योनि के सारे पाप समाप्त, है कि नहीं? तो इसलिए ये तीसरा पॉइंट देखना चाहिए, कभी ऐसे महान ऋषि, महान साधु, महान वैष्णव कभी दे तो हमें भेद बुद्धि ना दे, उसके दोष बुद्धि ना हो करके देखना चाहिए कैसे वह ऑल ऑस्पिशियस रहा है। इस प्रकार से आपका कोई प्रश्न या कमेंट टिप्पणी हो, ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर लिए, लेकिन किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी हो या, तो ये 3 पॉइंट हमने चर्चा किए। पहला जो है किस प्रकार सत्कार नहीं होने पर क्या नुकसान है, सत्कार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि महान ऋषियों के श्राप को कैसे समझा जाए, कि वो यदि ऐसे आदर की भावना हम तो सुनते हैं हमारे ना मान दें, तो ये पॉइंट डिस्कस किया कि वो अपने सम्मान के लिए नहीं लेकिन उस पदवी या जो पोजीशन है उसके सम्मान के लिए। और तीसरा पॉइंट, उनके द्वारा आए गए किसी भी प्रकार से संपर्क और नॉर्मली ऑलवेज ऑस्पिशियस रहा है। हरे कृष्ण।
थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे आपने जो ये वाला बताया, और किसी तरीके से अक्सर जो है लोग देखते हैं कि हमें तो बोलते हैं ऐसे ऐसे खुद गुस्से में आ जाते हैं, तो जैसे आपने बताया पदवी एंड उस पदवी की गरिमा को जो है को प्रोटेक्ट करना, ये भी ब्राह्मण का दायित्व, बिकॉज दैट इज ब्राह्मणिकल कल्चर. इफ इट डजंट डू दैट द ब्राह्मणिकल कल्चर विल गो डाउन एज इट वेंट डाउन इन इंडिया. ये इसी तरीके से शुरू हुआ, जब ब्राह्मण का सम्मान नहीं होना होता है और ब्राह्मण डजंट केयर बिकॉज ब्राह्मण स्टार्टेड गेटिंग करप्टेड, उसको पैसा दे दो सम्मान नहीं चाहिए. सो देन ग्रेजुअली स्टार्टेड गोइंग डाउन, राजा है मैं राजा का नौकर हूँ, सो इट वेंट डाउन. तो इट्स अ फैक्ट कि सम्मान है उसका यहाँ उपयोग की बात हो रही है, उपभोग की बात नहीं है.
तो सही बात है, ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्मान लेने वाला व्यक्ति भी पात्र होना चाहिए, उसका उपयोग करे उसका उपभोग ना करे, है कि नहीं, और अन्य लोग उसके सबमिसिव रहें. वरना सब इसी प्रकार से गिरा, महाराज परीक्षित ने शमिक ऋषि का एक प्रकार से अपमान किया, लेकिन उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम किया वो श्रृंगी ने श्राप दे के किया, है कि नहीं. उसने राजा का सम्मान नहीं कर पाया, और वो तो तीन प्रकार से उनको इतने गलत गलत शब्द बोलेंगे कि ये तो कुत्ते के समान है, हमारे घर के डोर रक्षक को ऐसे बोल रहा है, ही स्पीक्स लाइक दैट टू परीक्षित, सो ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग. तभी ब्राह्मणों के डाउनफॉल से जो गिरा, तो ब्राह्मण कर्तव्य अपने आचरण से और अपनी शिक्षा से लोगों को सिखाए कैसे सत्कार करना है. दैट्स अ वेरी एसेंशियल पॉइंट. यू शुड नॉट ओनली, यू शुड टीच पीपल हाउ टू डू सो. प्रॉपर नहीं सिखाया कैसे गुरु की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. श्री जगन्नाथ बाबाजी महाराज की जय. श्री रसिकानंद प्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.